ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग फिफ्थ कैंटो पांचवा चैप्टर 32वां श्लोक का मंथन करेंगे, अभ्यास करेंगे। श्लोक बड़ा लंबा है, इसलिए आप लोग मेरे पीछे पीछे दोहराओगे। यर्हि वाव स भगवान् लोकम् इमं योगस् याधा प्रतिपम इवा चक्षाना तत् प्रतिक्रिया कर्म विभस्तितम् इति व्रतम् आजगरम् आस्थिता सयाना एवास्नाति पिबति खादति अवमेहति हदति स्म चेष्टमान उच्चरिताम् आदि दोदेश। यर्हि वाव जप स उस भगवान भगवान ने लोकम जनता को इमम इस योगस्य योग का उद्दा प्रत्यक्ष प्रतिपमः विरुद्ध इस सदस्य आचक्षण देखते हुए तत उसकी प्रतिक्रिया विरोध में कर्म क्रिया विभत्सितम विभत्स द्रुणित इति इस प्रकार व्रतम आचरण आचरण रुति आजगरम अजगर का एक स्थान पर पड़े रहने का आस्थित स्वीकार करके सायन लेटे रहना एव निस्संदेह अस्नाति भोजन करता है। पीबति पीता है खादति खाता चबाता है अमेहित अमेहति पेशाब करता है हदति मल त्याग करता है स्म इस प्रकार चेष्टमान लुढ़कते हुए उच्चरिते मल तथा मूत्र में आदिग्य उदेश इस प्रकार उसका शरीर लथपथ हो गया। ट्रांसलेशन प्रॉपर श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जब भगवान ऋषभदेव ने देखा कि जनता उनकी योग साधना में विघ्न रूप है, तो उन्होंने इस उसकी प्रतिक्रिया में अजगर का सा आचरण रुति ग्रहण कर लिया। वे एक ही स्थान पर लेटे रहने लगे। वे लेटे ही लेटे खाते पीते पेशाब तथा मल त्याग करते हैं और उस पर लोटपोट करते हैं, यहाँ तक कि वे अपने सारे शरीर को अपने ही मल मूत्र से सान लेते हैं, जिससे उनके विरोधी उन्हें विचलित ना करें। तात्पर्य, अपने प्रारब्ध के अनुसार एक ही स्थान पर रहकर भी मनुष्य सुख तथा दुख उठाता है, यह शास्त्रों का आदेश है। जब वह सिद्ध हो जाता है तो वह एक ही स्थान पर रह सकता है और परम नियंता उसकी समस्त आवश्यकताओं को पूरा करता है। जब तक वह उपदेशक न हो, उसे संसार भर में घूमने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक स्थान पर रहते हुए मनुष्य काल तथा स्थिति के अनुसार भक्ति करता कर सकता है। जब ऋषभदेव ने देखा कि संसार भर में घूमते रहने से उनको बाधा पहुंचती है, तो उन्होंने अजगर तुल्य एक ही स्थान पर लेटे रहने का निश्चय किया। इस तरह वे लेटे लेटे खाते पीते मल मूत्र त्याग और अपने शरीर को उसी में साने रहते, जिससे लोग उन्हें सताए नहीं। सब लोग दोहराएंगे मेरे पीछे, जब भगवान ऋषभदेव ने देखा कि जनता उनकी योग साधना में विघ्न रूप है, तो उन्होंने इसकी प्रतिक्रिया में अजगर का सा आचरण ग्रहण कर लिया। वे एक ही स्थान पर लेटे रहने लगे। वे लेटे ही लेटे खाते पीते पेशाब तथा मल त्याग करते हैं और उसी पर लोटपोट करते हैं, यहां तक कि वे अपने सारे शरीर को अपने ही मल मूत्र से सान लेते हैं, जिससे उनके विरोधी उन्हें विचलित न करें। नमः विष्णु पदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ति नमिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी प्रश्चतादे सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यार से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद बड़े कृपालु थे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई संचय नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने हमको साइंस भी सिखाया और स्पिरिचुअल साइंस भी सिखाया है ना। प्रभुपाद जी ने वो स्पिरिचुअल साइंस का मतलब क्या है कि अंतरात्मा के लक्ष्य क्या होना चाहिए और अंतरात्मा को आगे कैसे बढ़ना चाहिए, उसके विषय में हमें सिखाया। साइंस जिसको हम साइंस बोलते हैं, उनको प्रभुपाद जी बोलते थे नी साइंस। नी साइंस मीन्स बेसिकली इट्स नॉन साइंस। आज कुछ है, कल वही साइंस बदल जाता है, परसों वो साइंस कूड़ेदान में चला जाता है और नया साइंस आ जाता है, और हम उसको साइंस बोलते हैं। जो कूड़ेदान के लायक ज्ञान है उसको हम अपनाते हैं किसी ना किसी रूप में, सेलफोन के रूप में, कभी टेलीविजन के रूप में, कभी रेडियो के रूप में। रेडियो नहीं था, उसकी पहले एक तार होता था ना, जिसमें एक डब्बा एक साइड पर हो एक डब्बा दूसरी साइड पर, उसके ऊपर लोग बातचीत कर लेते थे। वो सोचते थे कितना बड़ा साइंस है, आज कौन डब्बे को पकड़ के घूमता है, सब सेलफोन को पकड़ के घूमते हैं। इसके बाद अभी ऐसे सूचना आ रही है कि एक चिप निकलेगी और चिप आपके दिमाग के अंदर यहाँ डाल दी जाएगी, फिर आप बातचीत कर पाओगे। और वो चिप्स के द्वारा गवर्नमेंट को पता होगा कि हर समय आप कहाँ पर हो, वहां तक के अगर मलमूत्र भी त्याग रहे तो उनको पता है कि आप कहाँ बैठे हो, है ना। मलमूत्र की बात इसलिए करो कि यहाँ राजा ऋषभ देव को देखो, उन्होंने कितना सब कुछ त्याग दिया, क्योंकि वो बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा रहे, भगवान का स्वयं स्वरूप है, इसलिए सब लोग उनको सताते थे, कोई उनको छोड़ते नहीं थे। तो समय ऐसे आता है कि जब हम भगवान को, भगवान के द्वार में जाना है, भगवान के बारे हमें मंथन करना है, भगवान की नाम की रुचि लगानी है, और किसी भी हालत में संसार की हर माया को त्यागना है, तो ये एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल है यहाँ पर कि ऋषभदेव क्या करते हैं कि सबको दूर रखने के लिए, क्योंकि माया का बहुत सारे अनुक रूप होते हैं, बहुत सारे लोग शिष्य के रूप में भी आते हैं। लेकिन ऋषभदेव को यह मालूम था कि अगर मैं भरत महाराज की तरफ एक भी गलती करूंगा तो दोबारा मुझे जन्म लेना पड़ेगा, एक भी गलती नहीं कर सकता हूं। भरत महाराज हिरण को संभालते संभालते उनका लगाव हो गया था। इसी तरह अगर हम हमारे जैसे गुरुजन हैं, गुरु भी शिष्य की तरफ ज्यादा लगाव हो जाता है तो चांसेस है वापस आने का। कल हम लोग, हमारा एक बक्कन है हॉस्पिटल में, उनकी एंजियोप्लास्टिक हुई, तो बता रहे थे कि आजकल जब एंजियोप्लास्टिक करते हैं तो सिर्फ जहां से वो लोग अंदर हो इंस्ट्रूमेंट डालते उसी एरिया को नम कर देते हैं, तो आपको पता नहीं लगता है, दुख नहीं होता, दर्द नहीं होता है। लेकिन वो बता रहे थे कि मैं तो चांटिंग कर रहा था, लेकिन मेरे ही वार्ड में वहां से पांच लोग आए थे ना, पांच बोला ना, पांच लोग, पांच के पांच की मृत्यु हो गई, पांच के पांच चले गए, कोई भी एक भी नहीं बचा, वो अकेले ही बच गए। तो बोलते कि मैं अकेला ही था जो भगवान का नाम जप रहा था, कि शायद अगर मुझे जाना पड़े तो मैं भगवान का नाम जपते जपते जाऊं। तो जो भी दो घंटे का जो ऑपरेशन था उनका, और लोग अंदर से स्पेशल वो डालते इंस्ट्रूमेंट, वो वेन के थ्रू यहाँ से ले जाते हैं, जहाँ भी उनको दो रिंग की तरह छोटी सी चीज होती है उसको डालते कि आपकी जहाँ भी आर्टरी ब्लॉक हो जाती तो उसको खोलने के लिए, और वहाँ बंद नहीं, अगर आपकी आर्टरी बंद हो जाती तो आप बंद हो जाते हो, है ना, फिर कोई चांस नहीं रहता चांटिंग करने का, ना तो महाप्रसाद गोविंद करने के लिए, है ना, कोई चांस नहीं रहता है। तो बोलते आज जितने भी वहाँ लोग थे सब लोग आश्चर्य हो गए कि ये देखो जब तक उनका ऑपरेशन हो गया तब तक चांटिंग कर रहा था, है ना। उनको दिखाया जाता था कि अभी तुमने वहाँ, आज के तो टेक्नोलॉजी है ना, टेलीविजन में दिखाते हैं अब कहाँ तक सुई पहुँची है, कहाँ तक रिंग पहुँची है, कहाँ तक आपका आर्टरी बंद है, सब कुछ देख सकते हैं आप, मतलब जो अंदर शरीर के अंदर क्या है आप देख सकते हो क्या हो रहा है। जब तक खून चलता है, हार्ट के द्वारा आ जाता है, साफ होकर आ जाता है बाहर, तो आपका शरीर चलेगा। जीवेरे स्वरूप होय नित्य 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 कृष्णदास। जीव ये शरीर नहीं है, जीव तो शरीर लेता है, जैसे हम लोग गाड़ी लेते हैं ना, फिर छोड़ देते हैं गाड़ी जब पुरानी होती है, तो जीव भी एक शरीर प्राप्त करता है कर्मों के अनुसार, और फिर समय आता है तो उसको छोड़ना पड़ता है ना। लेकिन भाग्यशाली वो लोग होते हैं कि जिनको तिलक लगाने का शरीर मिलता है, तिलक लगाते हैं, भाग्यशाली वो लोग हैं कि जो भगवान की भक्ति कर सकते हैं। वैसे भी आज महेश पंडित का तिरुभाव दिन है और उदाहरण दत्त का भी, तो ये दोनों कौन थे, ये दोनों भगवान की कृष्णा लीला में गोपा बन के आए थे ना, ग्वाल बाल थे। जो महेश पंडित जी थे वो ऐसे बताते हैं कि वो सात में गोपा थे, और जो उदाहरण दत्त थे वो बारह में गोपा थे। या आप सात में गोपा हो बारह में गोपा, उसका कोई अंतर नहीं पड़ता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, वो लोग गोपाल ग्वाल बाल के रूप में आए थे। और दोनों अमीर घर में आए थे, दोनों की यहाँ जैसे फैमिलीज थे, बहुत अच्छी फैमिली थी, भक्ति में थी, लेकिन दोनों को नित्यानंद महाप्रभु की कृपा मिली। दोनों को क्या मिला? नित्यानंद महाप्रभु की कृपा। और दोनों ने नित्यानंद महाप्रभु के साथ बहुत नृत्य भी किया, बहुत प्रचार भी किया। तो ये है, जैसे ये जो प्रभुपाद जी हमें इन लोगों का उदाहरण क्यों देते हैं कि हम समझ सकते हैं कि इनके द्वारा कि भक्ति कैसे की जाए। जैसे गोपाल ग्वाल बाल हैं, गोपा के रूप में आते हैं, उनको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं होती है। भगवान को भी यहाँ पृथ्वी में आने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, स्वयं आते हैं और प्रभुपाद जी की जैसे शक्ति वैसे अवतार को यहाँ हमारे लिए भेजते हैं, जिनके द्वारा हमें अभ्यास होता है कि हमें भी भक्ति कैसे करनी चाहिए। महेश पंडित थे, और उन्होंने बहुत ही छोटी आयु में सब कुछ छोड़ दिया था। जैसे नित्यानंद महाप्रभु का दर्शन हुआ, नित्यानंद महाप्रभु को नाचते हुए देखा, कीर्तन हुए करते हुए देखा, तो बहुत ही आकर्षित हो गए। महेश पंडित तो बहुत ही मतलब धनवान घर से थे, उनका मतलब क्या बोलते हैं, सोने का बिजनेस था उन लोगों का, तो इतना बड़ा कारोबार चला रहे थे। और जैसे ही नित्यानंद महाप्रभु का दर्शन हुआ, वो भी नाचने लगे, महाप्रभु जी को अपने घर में आमंत्रित किया, कई दिनों तक उनको प्रसाद वगैरह खिलाए, उसके बाद वो भी घर छोड़ के निकल पड़े छोटी आयु में। जैसे सच्ची माता विश्वरूप और विश्वंभर को दोनों को बहुत ही प्यार करते थे ना, तो निमाई जब छोटे थे तो उनका बड़े ब्रदर हमेशा अद्विता महाप्रभु के घर में चले जाते थे, छोटे छोटे बालक। तो जब सच्ची माता प्रसाद बनाती तो बड़े प्यार से बनाती थी, और प्रसाद तैयार होता था फिर भी बड़े भैया दिखता नहीं था, दाऊजी दिखाई नहीं जाते थे, तो फिर निमाई को बोलती थी माँ कि जाओ उसको लेकर आओ। उसको ये भी मालूम था कि हमेशा अद्वैताचार्य के घर में बैठे होंगे और वहां नृत्य कृष्ण लीला कृष्ण कथा चलती थी। तो निमाई छोटा बालक था तो ज्यादा था, ऐसे बताते हैं कि वो बड़े भाई की धोती खींच के बोलते थे चलो चलो अभी प्रसाद तैयार है, माँ वेट कर रही है, तो उनको खींच के ले आते थे। तो उस समय में जब निमाई जाता था उधर, तो वो लोग कृष्ण भगवान का ही नाम लेते थे, लेकिन जाते निमाई का जाते सब लोग सुनिए हो जाते थे कि निमाई इतने मतलब प्यारे लगते थे उनको, निमाई का रूप इतना आकर्षित था कि वो लोग सब एकदम से स्थिर बन जाते थे, स्टैच्यू हो जाता है ना, बोलते ना स्टैच्यू, गेम खेलते हैं ना बाल के स्टैच्यू, हिलना मत बोलना मत श्वास ले सकते हो। तो वैसे विश्वरूप को ऐसे निमाई लेकर आ जाते थे, और फिर दोनों बालक के रूप में दोनों भगवान कृष्ण बलराम जी प्रसाद ग्रहण करते थे, और माँ देखती थी, माँ का बड़ा प्यार था। लेकिन माँ को चिंता थी कि ये बड़ा भैया हमेशा अद्वैत के पास जाता है, ये ठीक नहीं है, तो इसकी जल्दी से शादी की जाए। भगवान तो भगवान है, चाहे कृष्ण है बलराम तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ। कभी ये मत सोचना कि मैं कोई भी चीज भगवान से छुपा सकता हूँ। कभी हम सोचते ना चलो कोई बात नहीं, छोटी सी गलती में कौन सा बड़ा प्रॉब्लम है ना, छोटी सी गलती से तो गलत रास्ते जाना शुरुआत होती है हमारी ना, इसलिए गलतियां कभी मत करो। अगर जान पहचान में भी नहीं, अनजाने में भी कोई ऐसा आपको ऐसी चीज है, गलती होती है, तो उसके लिए प्रायश्चित करो, तुरंत प्रायश्चित करो। जैसे हमारे जो ब्राह्मणगण हैं, यहाँ कितने लोग ब्राह्मण हैं, कितने लोग भगवान की डेटी की वर्शिप करते हैं, वेरी गुड। देखो अमेरिका वाले भी ब्राह्मण यहाँ बैठे हैं ना। तो ब्राह्मण जो भगवान के लिए पूजा करते हैं ना, अगर ओम शास्त्र में लिखा है और हमारी जो डेटी वर्शिप बुक में, उसमें भी प्रभुपाद जी ने स्ट्रेस करवाए हैं कि अगर आप 30 सेकंड से लेट होते हो ना अपनी सेवा में, तो अपराध गिना जाता है। क्या गिना जाता है? अपराध गिना जाते हैं। इसलिए जो सेवा होती है भगवान की, उसके लिए हमें तात्कालिक पहुंचने का है। वैसे तो जनरली डेटी वर्शिप में बताते हैं कि 15 मिनट पहले पहुंच जाइए, 15 मिनट पहले पहुंच जाओ और वहां रेडी हो जाओ, और जब टाइम होता है एकदम डॉट में घंटी बजाओ, गुरु का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़िए, पूजा करिए। तो अगर हम लोग लेट होते हैं तो उसके लिए प्रायश्चित करना पड़ता है। जो जिसकी भावना सही है, जिसका भगवान के प्रति एक प्रेम सही है, उनसे गलती होएगी तो सारा दिन का उपवास भी करेंगे, एक भागवत गीता का अध्याय का अभ्यास करेंगे। तो हम लोगों को ऐसे कभी नहीं सोचना है कि भगवान को नहीं मालूम है। माता सची ने सोचा कि मैं अभी जल्दी से इसकी शादी करवा देती हूँ तो फिर घर में बैठेगा, नहीं तो भागता रहेगा। भगवान इतने छोटे बालक थे तो वो घर छोड़ के चले गए, संन्यास ले लिया। छोटे ही बालक के रूप में उन्होंने संन्यास ले लिया। तो ये सब कुछ हमारे लिए भगवान ने इसलिए किया है कि हम लोग शायद अगर हम ये सोचे कि ऋषभ देव ऐसे क्यों कर रहे हैं, समझने के लिए कठिनाई हो सकती है कि कैसे हो सकता है मल मूत्र में रहना एक भक्त के लिए, एक भगवान के रूप में। हमें एक्सट्रीम्स मतलब बहुत ही एक्सट्रीम एग्जांपल दिए जाते हैं, इसलिए कि हम समझ पाए कि हम लोग जो मॉडरेशन में साधारण रूप में हम लोग जो भक्ति करते हैं तो उसका हमारा भाव सही रहना चाहिए, भाव सही रहना चाहिए। और हमको अपने आप को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। भक्ति में आगे बढ़ना है तो अपने आप को धोखा कभी मत नहीं देना। धोखा देने से हमारा ही नुकसान पहुंचेगा, धोखा कभी नहीं देना चाहिए। बेटर है कि हम समझें कि हमें क्या बताया जाता है, हम समझें हम आगे कैसे बढ़ें। अगर हमें 5000 साल पहले की जो लीला बताई गई उसमें समझ नहीं आती है, 500 साल की लीला पहले बताई जाती है वो नहीं समझ आती है, तो कम से कम प्रभुपाद जी तो है ना, हमारे लिए तो एक जीवित उदाहरण थे प्रभुपाद जी। उनका उदाहरण लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, उनको उदाहरण है, उन्होंने कितनी तपस्या की, उनकी तपस्या को देखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। इतनी बड़ी आयु में इन्होंने कितनी तपस्या की, कोई भी समय ऐसा नहीं था कि उसको ऐसे लगता था कि अभी आज मैं ज्यादा सो लूं, चलेगा आज नहीं लिखूंगा तो चलेगा, आज मैं प्रचार नहीं करूंगा तो चलेगा, आज मैं अपनी 64 माला नहीं करूंगा तो चलेगा। एक भी दिन ऐसे नहीं कि प्रभुपाद जी ने ऐसे कुछ लिखा है या तो देखा है भक्तों ने ना, क्योंकि मनुष्य जन्म सुदुर्लभ है, जीवन क्या है सुदुर्लभ है। हमारा जो जीवात्मा है इस जीवात्मा को हमें दोबारा किसी गर्भ में नहीं ले जाना है, तो हमें प्रभुपाद जी का जो आदेश दिया है उस आदेश का पालन करना पड़ेगा। छोटी सी तपस्या, इतनी कोई बड़ी तपस्या नहीं है। हमारी तपस्या क्या है कौन बता सकता है, तपस्या क्या है हमारी? मंगल आरती माना, जाप करना, महाप्रसाद गोविंद जप करके फिर प्रसाद पाना। कितने लोग महाप्रसाद करके ही प्रसाद पाते हो? सब लोग पक्का? झूठ मत बोलना है, भगवान सबको देखते हैं, उनको सब कुछ मालूम है, तुम्हारा हाथ अच्छा सही है कि गलत है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आप लोग जानते हैं, आप लोग अंदर से जानते हैं। हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि हमारे लिए इतने सारे फेस्टिवल हैं कि हर रोज कोई ना कोई फेस्टिवल हम सेलिब्रेट कर सकते हैं ना। एक भक्त को पूछा गया था ये कि हमें अपना जीवन का सबसे सुंदर उत्तम या तो सबसे बड़ा लाभ कब लेना चाहिए, तो वो बताते हैं कि मरने के एक दिन पहले तो खूब आनंद ले लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? मरने के पहले एक दिन पहले खूब भगवान के नाम का आनंद ले लेना चाहिए। तो फिर उनको सवाल पूछा गया कि मरने का कोई टाइम लिखा है क्या? लिखा है टाइम? नहीं लिखा है ना, तो उसका मतलब भगवान के नाम का आनंद हमेशा लेना चाहिए, हर रोज लेना चाहिए, हर वक्त लेना चाहिए। अद्वैता आचार्य महाप्रभु की आप लीला पढ़ोगे समझोगे तो उनका घर में हमेशा 24 घंटे के लिए उनके घर में कथा कीर्तन चलता था, इतने भक्त लोग आते थे। और चैतन्य महाप्रभु जब अवतारित हुए, नित्यानंद महाप्रभु अवतारित हुए, तो लोग उनके घर में रहते थे। जब बड़े भैया वहां से संन्यास लेकर के निकल पड़े और फिर जब जगन्नाथ मिश्रा शरीर छोड़ के चले गए स्वधाम, तो चैतन्य महाप्रभु जब गया से वापस आते हैं तो वो भी वापस आते ही फिर अद्वैताचार्य महाप्रभु घर में बैठने लगे। कितनी छोटी आयु में उन्होंने भी क्या किया, कथा कीर्तन करना शुरू कर दिया है। कथा कीर्तन करना महत्वपूर्ण है, कोई भी चांस चुकाना नहीं चाहिए हमें, हमेशा कथा कीर्तन करने का है हम लोगों को। कोई ऐसे समय नहीं होना चाहिए कि हम कथा और कीर्तन ना करें। हमारे जो भक्त अभी वहां हॉस्पिटल में बैठे हैं वो बता दें कि मैंने इतना चांटिंग किया उस समय, ऐसे चांटिंग मैंने सारे जीवन में कभी नहीं किया था, क्योंकि पक्का नहीं था ना। अभी देखो पांच लोग चले गए उसके सामने, एक आया गया, दूसरा आया गया वो भी चला गया, तीसरा आया वो भी चला गया, चौथा आया वो भी चला गया, पांच में आया। आप सोचो कि आप आपका नंबर छठा है, आप उसी हॉस्पिटल में उसी बेड पर बैठे हुए, और सबको सेम प्रॉब्लम था, हृदय का प्रॉब्लम था। सुरिदम सर्वभूतानाम, सुरिदम सर्व, भगवान स्वयं परमात्मा के रूप में यहां बैठे हैं। आपको उनको पुकारोगे, आप उनका नाम लोगे तो आपकी सहायता क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? इसलिए तो यहां बैठे हैं, और तो हमेशा 24/7 आपकी सेवा में बैठे हैं, आपको ज्ञान देने के लिए, आपको मार्गदर्शन करने देने के लिए, आपको हर समय हर क्षण में हर कदम में आपको सहयोग करने के लिए। ऐसे बताया है ना कि पदम पदम विपदम, कि हर कदम पर हमारे लिए कोई ना कोई समस्या खड़ी है, यही कि हमें मालूम नहीं कौन सी समस्या नेक्स्ट आने वाली है। लेकिन हमें वो ही नहीं सोचना है कि पदम पदम विपदम, मतलब कि हर समय हमारे लिए समस्या आती रहेगी तो हमें समस्या का समाधान करना पड़ेगा। ये भी सोचो कि साथ में परमात्मा भी है, एक हमारी पदम के पहले 10 कदम पहले वो हमारे साथ में खड़े हुए हैं। ऐसे सोच के समझेंगे बड़ी से बड़ी समस्या आएगी उसका हम अच्छी तरह से सामना कर पाएंगे। समस्या हमें भगवान क्यों देते हैं? आपके ख्याल में क्या भगवान को आनंद मिलता है? हम लोग तपोभूमि में क्यों आए हैं? प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हाँ, जितने भी जीवात्मा या अवतार होता है सब पापी हैं, इन्होंने कुछ पाप किया है, तो इस पाप का सुधार करने के लिए हम लोग आए हैं यहां। ये पाप का जो प्रायश्चित करना पड़ता है जीवात्मा को, वो प्रायश्चित करने के लिए हम लोग आए हैं। भगवान हमें समस्या इसलिए देते हैं कि हमें बार बार याद दिलवाते हैं कि देखो ये सही जगह नहीं है, ये आपकी गाड़ी टेम्पररी है, ये साधन जो आपने प्राप्त किया है वो टेम्पररी है, वो कुछ समय के लिए है, आज नहीं तो कल उसको आपने त्यागना है। जब समस्या आती है तो हमें समझ आती है कि भौतिक संसार में सुख नहीं मिल सकता है, भौतिक जीवन में सुख नहीं होता है, भौतिक शरीर में सुख नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जो भी चीज प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जिस भी चीज को हम समझते हैं कि ये सुख है वो टेम्परेरी, जैसे हमें खुजली आती है तो हम खुजली कर लेते हैं, तो खुजली करने से थोड़ी राहत मिलती है ना, तो हम सोचते हैं कि वो सुख है। इसी तरह जो जिस भी चीज को बड़ी की बड़ी छोटी से छोटी चीज को हम समझते हैं कि हमारे जीवन में सुखदायी है, सुखदायी नहीं है और टेम्परेरी खुजली है। तो इसलिए हमको सबको इन चीजों से बचने का है। जब भी कोई दुख आता है ना तो आप ऐसे सोचो कि इस दुख में हमारे लिए कौन सी शिक्षा है जिसके द्वारा हम एक कदम आगे हमारी भक्ति में बढ़ पाएंगे। जब भी दुख आता है इसका मतलब कि नाउ कृष्ण इज टेलिंग अस, भगवान हमें बता रहे हैं कि आप इस स्टेप से आगे बढ़ सकते हो। पेंसिल भी यूज करनी तो आप शार्पन करनी पड़ती है ना, शार्प करोगे तो लेड निकलेगा फिर आप यूज कर पाओगे, थोड़ी पेंसिल को तपस्या करनी पड़ती है, वो क्या बोलते हैं रेजर की धारा से निकलना पड़ता है ना। ऐसे मनुष्य को भी आगे बढ़ना है, हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो तपस्या तो करनी पड़ेगी, तपस्या के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, तपस्या करना बहुत जरूरी है। उदाहरण ठाकुर महेश पंडित स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु उनके स्वयं भाई नित्यानंद महाप्रभु इतनी छोटी छोटी आयु में सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग कर दिया, बजाय कि वो तो सारी दुनिया का जो भी हम सोते या तो सोच भी नहीं सकते इतना आनंद ले सकते थे भौतिक रूप में, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया। किस लिए? क्योंकि हमें समझ आए कि संसार में जो भी जितनी चीज है, भाई बहन गाड़ी मोटर बंगला सोना हीरा मोती, कोई भी चीज काम की नहीं है। सनातन गोस्वामी के पास तो टचस्टोन था ना, आरसमणि था ना, कि जिस भी चीज को लगाओ तो सोना बन जाता है। तो उन्होंने कहाँ रखा था, कौन सी सेफ में रखा था? है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्विट्जरलैंड बैंक में रखा था, कोई ध्यान नहीं। इसको बोलते हैं त्याग। हमारे पास तो एक सोने की रिंग है, हमने छोड़ दिया रिंग विंग पहना, लेकिन एक सोने की रिंग भी होती तो हम उसको संभालते, अरे ये मेरी वेडिंग रिंग है, ये तो मेरी बर्थडे की 21st की रिंग है, कितना बचाव करके रखते हैं। ये नहीं सोचते कि 21 साल घुमा दिए है, कुछ किया नहीं है, व्यर्थ गए हैं, अभी बाकी का जो जीवन है उसका कुछ सत उपयोग किया जाए ना। तो इसलिए हम लोग तो मल मूत्र में स्विमिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो शक्ति नहीं है। ना तो पापा जी करते हैं कि हमें ये करने का है। ये तो एक एक्सट्रीम एग्जांपल है कि देखो कोई एकदम से पहुंचा हुआ जीव आत्मा उस समय में उस युग में उन्होंने क्या किया, सब दुनिया का त्याग करने के लिए। हम लोगों को बहुत अच्छी तरह पापा जी ने समझाया है कि आप लोग कीर्तन करो, जाप करो, प्रसाद का वितरण करो, प्रचार करो, है टीचिंग इज द एसेंस, प्रचार करोगे तो आपको स्वयं अंदर से अभ्यास होएगा। प्रचार करने के पहले हम बोलते हैं बुक्स आर द बेसिस, है ना, जो ग्रंथ है उसका अभ्यास करेंगे तो हमें ज्ञान मिलेगा। और जैसे कि भगवद गीता के बारे में प्रभुपाद जी ने तो कई बार दोहराया है कि आप जितनी भी बार आप भगवान की कथा सुनोगे, तो भगवान की गीत सुनोगे, भगवद गीता सुनोगे, तो जितनी बार आप ज्यादा दोहराओगे इतना ज्यादा ज्ञान आपको उत्पन्न, क्योंकि भगवान की वाणी का जो मैसेज होता है अनलिमिटेड होता है, इन्फिनिट होता है। इसलिए जितनी भी बार आप भगवद गीता पढ़ोगे तो आपको बोर्डम नहीं आएगा, यू नो, आपको ऐसे लगे दोबारा एक बार मैं पढ़ू। और जैसे आप प्रचार करोगे तो आपका जो अभ्यास है उसके अनुभव के साथ में जो प्रचार का अनुभव होएगा उसमें आपको अलग अलग तरह का अनेक अनेक तरह का ज्ञान मिलेगा, क्योंकि सूर्यदम सर्वभूताना भगवान स्वयं बैठे हैं, वो आपको डायरेक्ट कर रहे हैं ना। और कभी कभी अगर आप जैसे कि पुस्तक का वितरण कर रहे हैं और आपको जैसे इस महीने में जैसे भागवत गीता का वितरण कर रहे हैं हम लोग, तो अगर कोई मना भी करता कि नहीं मुझे भागवत गीता नहीं चाहिए, आप सोच रहे नहीं मैंने देने ही देनी है, तो आपका धमाक या तो आपके अंदर से जो इन्फॉर्मेशन वो मत दियो, अपन को कम से कम एक पैराग्राफ पढ़ो, एक लाइन पढ़ो, जो भी जिस व्यक्ति को आप दे रहे हैं कहीं से भी खोल के आप एक उनको पेज खोल के दिए, क्योंकि जब वो भागवत गीता का एक लाइन भी पढ़ेंगे, एक भी पैराग्राफ पढ़ेंगे, तो मतलब भगवान के साथ डायरेक्ट उनका कनेक्शन हो रहा है। और उसके बाद उसका रिजल्ट देखिए कितना आपको आश्चर्य होएगा कि मैं आधा घंटे से लगा रहा था, मेरी नहीं चली, और इन्होंने दो लाइन यहां से पढ़ी तो एक नहीं दो भागवत गीता लेकर चले गए। होता है, क्योंकि भगवान स्वयं यहां से बोल रहे हैं। दिल्ली टेम्पल, दिल्ली मंदिर का जो मंदिर है, उनका जो आर्किटेक्ट है एपी कानवेन्ने जी, अभी नहीं रहे, लेकिन उन समय में हम जब पहली बार मिले हैं तो हमने पता लगाया था कि इंडिया में सबसे रिनाउंड, सबसे टॉप मोस्ट आर्किटेक्ट कौन है जो इस मंदिर को डिजाइन कर सकते हैं। तो रिसर्च करते करते हमें बॉम्बे से पता लगा कि कलकत्ता वाले एपी कानवेन्ने अभी दिल्ली में है और इनको अप्रोच करिए। जब उनको हम मिले तो उनकी आयु भी 72 थी। बोल दिया कि नहीं, मैं 2 साल से मैंने सब काम छोड़ दिया, मैंने बहुत काम कर लिया, आगे मैंने कोई काम नहीं करना है, अभी मैंने सब रिलैक्सेशन करना है। हमने खूब प्रयास किया, हम लोकनाथ स्वामी थे, गोपाल कृष्ण थे, हम भी थे और भी भक्तगण थे। तो सुबेरे जब मिले तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं, मेरा बेटा कर सकता है, मैं नहीं करूँगा। हमारी यही इच्छा थी कि यही व्यक्ति करे। हमने वहां तक दोहराया कि देखो, प्रभुपा जी ने आपकी आयु में सारी दुनिया का भ्रमण किया और प्रचार किया, ठीक है। उस वक्त उन्होंने मना कर दिया। फिर हमने सोचा कि हम लोग बैठे थे बाहर से, इसको कैसे समझाया जाए। तो हम लोग ने एक प्लान किया कि हम उनके घर में चले जाते हैं, क्योंकि बिजनेस में गए थे तो शायद उसका माइंड का कॉन्शियसनेस कुछ और था, लेकिन हम उनके घर में चले गए और हमने जो भागवतम सेट है उनको 2 बॉक्सेस में पैक किया, अच्छी तरह रिबन लगाया, उनके घर में चले गए। भगवान की कुछ लीला ऐसी थी कि जब हम उनके बड़े घरों में, तब जब घंटी बजाते तो कोई चौकीदारी आता है या तो कोई सेवक आता है दरवाजे खोलने के लिए, लेकिन कानविंदी जी स्वयं स्टेप से नीचे आ रहे थे और दरवाजे के पास जब पहुंचे उसी वक्त हम लोगों ने घंटी बजाई। और हमारे साथ में हम जितने भी इंटरनेशनल डिवोटीज में आए थे उस समय गौर पूर्णिमा का समय था, तो उनको हम सबको बोला कि आज हमारा स्पेशल प्रोग्राम साथ में चलिए, सबको लेकर गए थे। प्रोग्राम कोई था नहीं है समय, उन्होंने बोला प्रोग्राम में जाना है, सबको साथ में ले गए थे हम। तो उन्होंने जब दरवाजा खोला तो उनके 10-15 लोग हम लोग खड़े हैं, कोई अफ्रीकन है, कोई यूरोपियन है, कोई अमेरिकन है, आगे महाराज खड़े हैं दोनों और हम लोग बीच में खड़े हैं। तो देखते ही रहिए, थोड़ा आश्चर्य हो गया कि अरे आप लोगों का तो मैंने मना किया था। फिर बोलता आइए आइए अंदर आ जाइए, सब लोग अंदर चले गए। हमने बोला आपके लिए गिफ्ट आइटम लेकर आए, आपके पास कैंची है प्लीज, तो उनके वाइफ को बुलाया, उन्होंने कैंची लेकर आई, फिर रिबन कटवाया, फिर बॉक्स खोला, फिर महाराज ने एक भागवतम के सेट निकाला, दिखाना शुरू कर दिया ऐसा फोटो पे, ये देखो हमारे सब विदेशी भक्तों ने किया है। एक आपने से पैराग्राफ पढ़िए, बस एक पैराग्राफ पढ़ा, उसके बाद बोलते आइए आइए बैठिए, आप सब बैठ जाए, इनके लिए फल ले आओ, ये ले आओ, वो ये ले आओ। एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद उसने सिर्फ हाय नहीं बोला, लेकिन बोला कि ये मेरी सेवा के रूप में होगा। हम लोग सोचा था कि अभी उसने हाँ बोल दिया, हमारा लक्ष्य हो गया, हम लोग हमारा लक्ष्य तक पहुंच गए। लेकिन दूसरे दिन हमको मिलकर ये बात करना था कि अभी आपकी परसेंटेज क्या होगी, ये लोग परसेंटेज लेते हैं। तो जब दूसरे दिन उनकी ऑफिस में बैठे थे, फिर महाराज ने मुझे इशारा किया, हमने पूछा कि कानविंद जी आपकी जो भी फीस हुए उसमें आप थोड़ा जो भी बेस्ट कर सकते हैं। तो अरे क्या बात करते हैं आप लोग, हम तो ये सेवा करेंगे, है ना। ये है, ये जो हमारी ग्रंथ है इसका ये पावर है। अंडर एस्टिमेट कभी मत करिए, भगवान और भगवान के प्रसाद में कोई अंतर नहीं है, भगवान और भगवान के ग्रंथ में कभी कोई अंतर नहीं है। ये ग्रंथ के द्वारा भगवान स्वयं उनके साथ में चर्चा करते हैं, भगवान स्वयं उनको आशीर्वाद देते हैं, जो भी पढ़ेगा उनको आशीर्वाद मिलेगा। कभी यह मत सोचना कि हम सब कुछ करने वाले हैं, हम हमें थी, जो हमारा जो अहंकार है उसको दूर रखिए ना, उसको दबा के रखिए। अहंकार ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, उससे बच के रहने के लिए हमें 3 आदापि सुनिश्चना करना पड़ेगा, झुक के चलना पड़ेगा। हर समय यह सोचना कि मैं अपने अहंकार के सहारे चल रहा हूं कि गुरु के आदेश के सहारे चल रहा हूं, ग्रंथों का मैं नियम का पालन कर रहा हूं कि नहीं। ऐसे हम सोचेंगे तो हमारे लिए भक्ति में आगे बढ़ना, फलीभूत होना, सब कुछ संभावना है। लेकिन अहंकार के आधार पर चलेंगे तो हम अवश्य डूबेंगे। डूबना या तो तैरना कमल के फूल की तरह है, ये आपके हाथों में। भगवान तो बोलेंगे मैं आपके लिए खड़ा हूं, आप आइए, आप आने के लिए तैयार है तो मैं आपको ले जाता हूं। लेकिन अगर आप तैयार नहीं हो तो अवश्य डूबोगे, डूबने का नहीं है। डूबने के लिए हम लोग नहीं आए हैं भक्ति के मार्ग पर। इसलिए जो पापा जी ने पुस्तक हमें दी है, सब ग्रंथ हमें दिया, उसका पूर्ण रूप से अभ्यास करो। कम से कम 3 घंटे दिन में हमें पढ़ाई करनी चाहिए, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर हर रोज 3 घंटे आप पढ़ोगे ना ध्यान पूर्वक, तो आपको 20 साल लगेगा जितना मैंने ज्ञान दिया इसका अभ्यास करने के लिए। कितने साल? 20 साल में आप 3 घंटा करोगे। अगर आप 1 घंटा करोगे तो इसके हिसाब से आप अपना मैथमेटिक्स कर लीजिए, है। अगर आप आलसी और नहीं कर रहे हो तो इस हिसाब से आप वो भी कैलकुलेशन कर लीजिए कि कितनी बार कितने गर्भ में आना पड़ेगा, है ना। बचना तीरना आपके हाथ में है, डूबना भी आपके हाथ में है। अभी आप अपने खुद जीवात्मा के लिए आप सुख चिंतक हो या नहीं हो वो आप ही तय कर सकते हो। भगवान सबको जान सकते हैं। जो गुरुजन होते हैं, भक्तगण होते हैं, वो तो पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं कि सबको भगवान के आशीर्वाद की प्राप्ति होए। किसी को कोई सवाल या तो कोई कमेंट, कोई एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं आप लोग? यस सर। धोखा नहीं देना चाहिए है कि अगर प्रभुपाद जी ने हमें सिंपल, बहुत सिंपल चीज पर, बेसिक चीज हमको दी है, 16 माला करो, नियमों का पालन करो, प्रिंसिपल्स को फॉलो करो, प्रचार करो, है ना। तो ये चीज हमें हमेशा करनी चाहिए, नियमित करनी चाहिए। जैसे आप अगर इंग्लैंड में जाओगे तो बकिंगम पैलेस में जाओगे, जो गार्ड्स ड्यूटी पर होते हैं रॉयल बिल्डिंग के बाहर, तो वो टाइम पर आते हैं, वहाँ खड़े रहना पड़ता है 8-8 घंटे, वो एक दरवाजे के पास खड़े रहते हैं। उनका इतना ही वॉकिंग अलाउड है कि एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे या तो बिल्डिंग का एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक वो मार्च करके आते हैं, खड़े रहते हैं ऐसे पुतले की तरह, जब तक उनका मालिक नहीं आते, जो कमांडर होता नहीं आता, वहां से हिलेगा नहीं। कितना कठोर चीज है, तपस्या है, सर्दी हो गर्मी हो जो भी है, तो वो लोग उनका ड्यूटी है, ड्यूटी फॉलो करते हैं। अगर हम लोग, हमारे पास इतनी भक्ति की भावना नहीं, इतनी भक्ति नहीं है, तो कम से कम नियमों का पालन करिए, है ना। कम से कम हमको जो प्रिंसिपल दिए हैं प्रभु जी ने उनको फॉलो करिए। ये मत सोचो कि आज मैंने 16 माला नहीं की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज आप दुनिया भर की एक्सक्यूजेस निकाल सकते हो ना, कि पत्नी से झगड़ा हो गया, मेरा सिर दर्द कर रहा है, कल मैं कम सोया था, या तो कल मैंने 25 माला कर ली थी तो आज नहीं करूंगा तो चलेगा, है ना। मन तो दुष्ट है, माइंड इज योर एनिमी एंड इज योर बेस्ट फ्रेंड ऑल्सो, लेकिन उसको बेस्ट फ्रेंड बनाने में उसको आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा, उसको कंट्रोल में रखना पड़ेगा, जैसे सब गार्ड्स को कंट्रोल में रखते हैं, आर्मी सोल्जर्स को कंट्रोल में रहना पड़ता है, नेवी सोल्जर्स को कंट्रोल में रहना पड़ता है ना। जैसे कि अगर आप चाइना इंडिया के बॉर्डर में हो, पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर में हो, तो आप कोई चांस तो नहीं लोगे कि आज मुझे गोली नहीं लगेगी। हर रोज आपको दोहराया जाता है। जैसे अमेरिकन जो सोल्जर्स जाते हैं विदेश में, इराक ईरान जहां भी, तो उस वहां बड़ा बड़ा बोर्ड लगाते हैं उनके जो कैंप होते हैं ना उसमें, कि इज दिस द फाइनल डे और इज दिस द लास्ट डे। क्योंकि जैसे उठते देखते हैं, चलो आज तो आंख खुली, कल खुलेगी कि नहीं खुलेगी पता नहीं है। सो सेम थिंग इन स्पिरिचुअल लाइफ, आपको कोई चांस नहीं लेना है कि चलो आज 16 माला नहीं हुए तो कल कर लूंगा। व्हाट इज द गारंटी, आपके पास क्या गारंटी है कि आपकी आंख खुलने वाली है कल, है ना। तो इसलिए ऐसे हमें अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए। सेक्रीफाइस करो, थोड़ा कम सो लो, थोड़ा कम खा लो। थोड़ा कम खाओगे तो आप मर ही जाओगे, थोड़ा कम सोओगे तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रभुपाद जी 2.5 घंटे से बड़ी मुश्किल से होते थे, उन्होंने बोला आप लोग 6 घंटे सो सकते हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम सब लोग 8 घंटे सोते हैं। बहुत ही कम भक्त लोग हैं जो बोलेंगे मैं 4 घंटे के बाद उठ जाता हूँ तो 5 घंटे के बाद भागता हूँ ना। तो इसीलिए कभी भी चांस मत लीजिए कि 16 माला नहीं कही तो चलेगा, है ना। आज चलो सारा दिन खाए नहीं अभी ना, तो रेस्टोरेंट में से कुछ लेकर खा लेता हूँ। आपको मालूम है कि कार्मी फूड है, तो एक दिन उपवास कर लोगे तो आपको कोई नुकसान नहीं है, आपके शरीर के लिए भी अच्छा है। अक्सर हम एकादशी क्यों करते हैं? असल में एकादशी के दिन के हम लोग अच्छी तरह फास्ट करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने फीस्ट इंट्रोड्यूस कर दिया एकादशी, क्योंकि हमारे लिए मुश्किल है, तो फिर हम लोग यहाँ तक पेट भर लेते हैं ना। लेकिन बाद में प्रभुपाद जी ने ये भी बोला है कि जिसको एकदम सात्विक रूप से और कठोर रूप से अगर एकादशी करना है तो उस दिन फास्ट करिए, फीस्ट के पीछे मत भागिए, फास्ट करिए और भक्ति के पीछे भागिए। तो हर चीज में हमने प्रयास करके आगे बढ़ना है कि एकादशी कैसे सही तरह हो सकते हैं। मेरी 16 माला तो हो रही है, लेकिन उसमें क्या रुचि है? हमारी रुचि है? है नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा, नाम में रुचि है क्या? चैतन्य महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी की जो फाइनल इंस्ट्रक्शन देते हैं मनुष्य के लिए, सिर्फ ये तीन ही चीज बोलते हैं, नाम में रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा। क्या नाम में हमारी रुचि है? क्या मैं सचमुच में अपने जीव पर दया कर रहा हूं? दूसरों के ऊपर आप दया कैसे करोगे जब आप अपने सुख चिंतक नहीं होता, राइट? इसलिए हमें किसी भी रूप में किसी तरह का भी धोखा नहीं देना चाहिए। प्रसाद ग्रहण करने के पहले सारे राविद्या जो करो, ये सबको याद आए कि जो 6 इंच की टुकड़ी है ना यहाँ, वो बड़ी खतरनाक चीज है, उसको संभालना है अपने। प्रसाद ग्रहण करो तो हो सकता है कि संभल पाएगी, लेकिन इसको आप सिर्फ अपने सेंसेस के लिए इस्तेमाल करोगे तो आपके लिए दुखदायी बनेगी। ये सिंपल सिंपल चीज है हमारी, लेकिन ये सिंपल चीज भी हम उसमें भी हम अपने आप को धोखा देते कि हम नहीं करते हैं। बाहर की दुनिया में देखो लोग कितनी तपस्या करते हैं, 8-8, 10-10 घंटा भागते हैं काम करते हुए, और उसके बाद 2-2 घंटे रास्ते में ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, घर से निकलते बाहर आते हुए 14 घंटा निकल जाता है, 14 आवर्स डे लोग करते हैं। इतनी तपस्या करते हैं उसके बाद उनको एक छत के नीचे थोड़ा कुछ खाना मिलता है, उनको कोई अभ्यास ही नहीं है, ज्ञान नहीं है, ना भगवत गीता पढ़ते हैं ना जप करते हैं। हमारे लिए क्या कठिनाई है? 4-4.5 घंटे की सुबह रहेगी साधना भक्ति, उसके बाद हम लोग कहते कम से कम 6-8 घंटा तो प्रचार करिए, कोई बड़ी चीज नहीं है। मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम 16 मीन्स के मिनिमम, कम से कम। तो क्या आप कम से कम ही सब चीज में आगे बढ़ना चाहते हो? योगी नाम आप ही सर्वेशम, सर्वश्रेष्ठ बनिए हर चीज में। क्यों कम से कम करेंगे हम? ज्यादा से ज्यादा करो। क्यों हम कम से कम रुचि का अभ्यास करेंगे? ज्यादा से ज्यादा रुचि बढ़ाओ। क्यों हम कम से कम सेवा करेंगे? ज्यादा से ज्यादा सेवा क्यों ना करें? क्यों हम कम से कम अपनी जीवात्मा के ऊपर दया करेंगे? हम अपनी जीवात्मा के ऊपर सबसे सर्वश्रेष्ठ बनेंगे दया करने में, जिसके द्वारा हम सारी दुनिया में जितने भी जीवात्मा को मिले उनका सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद दे पाए भगवान का ना? जब हम ऐसे सोचेंगे कि हमें सर्वश्रेष्ठ बनना है भगवान की खुशी के लिए, गुरु की खुशी के लिए, तो कोई अपराध नहीं होएगा, कोई धोखा नहीं होएगा। ये दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे तो हम सर्वश्रेष्ठ भक्त बन सकते हैं। तो हमारे लिए चांस है कि दोबारा किसी गर्भ में नहीं जाने का है। Does it help? समझे कुछ? थैंक यू। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।